मुख्य समाचारों में विक्टोरिया के कोविड 19 के प्रकोप से 7 नई मौतों में एक किशोरी की मृत्यु, तस्मानिया में कोई नया मामला नहीं और भारत में कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। एक कोविड पॉजिटिव किशोरी लड़की वर्तमान प्रकोप के दौरान मरने वाली सबसे कम उम्र की विक्टोरियन बन गई है। वो अन्य स्वास्थ्य स्थितियों से भी पीड़ित थी। ये 15 वर्षीय पिछले 24 घंटों में हुई 7 मौतों में से एक थी और अब इस महामारी के प्रकोप से मरने वालों की संख्या 138 हो गई है। विक्टोरिया में पिछले 2 दिनों से 2000 से अधिक दैनिक मामलों की संख्या के बाद आज 1993 नए स्थानीय रूप से अधिग्रहित संक्रमण हैं। प्रीमियर डैनियल एंड्रयूज अगले सप्ताह के अंत में 70% डबल डोज टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने के बाद राज्य को फिर से खोलने का इरादा रखते हैं। राज्य के कोविड 19 कमांडर जेरोइन वीमर का कहना है कि उनकी सबसे बड़ी चिंता ये सुनिश्चित करना है कि राज्य के फिर से खुलने पर विक्टोरिया की अस्पताल प्रणाली स्थिति सामना कर सके।
Our hope and our intention would be that we'll expect that we would want to see those case numbers start to turn in the next week or two, as predicted by the original the modelling. We would you know, obviously we'll watch that very closely. But the real constraint on us is what it does for our hospital system. That is ultimately that's the capacity that we need to manage. That's a critical part of our system, because we need to ensure that those people who are getting COVID, as well as the wider community and whatever else other support people need, that we have the capacity to do that within our health system.
Tasmania में कोई नया coronavirus मामला दर्ज नहीं किया गया है। राज्य का दक्षिण भाग 3 दिनों के लिए बंद है। न्यू साउथ वेल्स के एक कोविड 19 सकारात्मक व्यक्ति ने संगरोध से बचकर समुदाय में 18 घंटे बिताए, जिनमें 2 घर, 1 सुपरमार्केट और 1 पार्क शामिल है। होबार्ट के उत्तरी उपनगरों में गिरफ्तार होने के बाद इस 31 वर्षीय व्यक्ति ने संपर्क करने वालों के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया। प्रीमियर पीटर गुडविन का कहना है कि 1400 से अधिक दैनिक कोरोना वायरस परीक्षण किए गए हैं, जो राज्य के लिए एक रिकॉर्ड संख्या है।
But the next 48 hours remains critical, and ask all Tasmanians in the south to work together to get on top of this as quickly as we can. In the main, people are doing the right thing. Last night there were a few police infringement notices issued, half a dozen warnings were provided. And there were also 45 vehicles that were turned around at our checkpoints over the course of the period since the lockdown started last night.
Tasmania में सिर्फ एक और सक्रिय मामला है, एक 15 वर्षीय लड़का जिसने इस महीने की शुरुआत में लॉन्सेस्टन में होम क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन किया था। राज्य ने इस साल सिर्फ 3 मामले दर्ज किए हैं। ACT ने कोविड 19 के स्थानीय रूप से अधिग्रहित 20 नए मामले दर्ज किए हैं। लगभग 3 सप्ताह में ये ACT का सबसे कम दैनिक मामला है और ACT ने अपने पूरी तरह से टीकाकरण वाले निवासियों के लिए और अधिक यात्रा प्रतिबंधों में ढील दी है। ACT में अब 495 सक्रिय मामले हैं। अस्पताल के 15 रोगियों में 10 रोगी गहन देखभाल में हैं। कैनबरा के लॉकडाउन को अब हटा दिए जाने के बाद निवासी अब बेट्समैन बे, गोल्बर्न और सदर्न हाईलैंड्स और स्नोई माउंटेन्स के शहरों समेत 26 न्यू साउथ वेल्स पोस्ट कोड्स पर जा सकते हैं और वापसी पर क्वारंटीन नहीं करना होगा। क्वींसलैंड ने अपने रोल आउट में तेजी लाने के लिए पॉपअप टीकाकरण केंद्रों की एक श्रृंखला का अनावरण किया है। राज्य भर में 33 बनिंग स्टोर्स पर क्लिनिक उपलब्ध होंगे। ट्रेजरर कैमरन डिक कहते हैं कि राज्य ने स्थानीय रूप से प्राप्त कोविड 19 मामलों की कोई नई रिपोर्ट तो दर्ज नहीं की है, लेकिन राज्य को वायरस के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है।
We know with COVID running rife in New South Wales that it is only a matter of time as New South Wales opens up that the Delta variant will come to Queensland. We are in a race to beat Delta, and the single biggest way to beat Delta is to get a vaccination.
ट्रेजरर जॉश फ्राइडनबर्ग का कहना है कि अगर ऑस्ट्रेलिया 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन नीति अपनाने में विफल रहता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान होने का जोखिम है। वो स्कॉट मॉरिसन की इस पुष्टि के बाद बोल रहे थे कि वो नवंबर में ग्लासगो में COP26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री फ्राइडनबर्ग ने कहा,
So this is a reality that we need to be very conscious of because we want to benefit from these changes that are occurring in international capital markets, not be disadvantaged by them. And it really does affect Australia because we rely so heavily on foreign investment, $4 trillion worth of foreign investment. It really affects Australia because half of our government bonds are bought by overseas investors and because commercial banks get a significant proportion of their funding from overseas sources.
यूके में अधिकारियों ने कंजर्वेटिव सांसद डेविड एमिस की छुरा घोंप कर हत्या करने को एक आतंकवादी हमला घोषित किया है। श्री एमिस जो 69 वर्ष के थे और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे, लंदन के पूर्व में ले ऑन सी में वेलफेयर्स मेथोडिस्ट चर्च में अपने घटकों के साथ एक बैठक में भाग लेने के लिए थे, जहां एक हमलावर द्वारा बार बार चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने मौके पर 25 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई। मेट्रोपॉलिटन पुलिस न्यू स्कॉटलैंड यार्ड के एक बयान ने पुष्टि की कि प्रारंभिक जांच में इस्लामिक चरमपंथ से जुड़ी एक संभावित प्रेरणा का पता चला था और उनका मानना था कि संदिग्ध ने अकेले काम किया था। श्री जॉनसन ने लंबे समय से सेवा कर रहे सांसद को श्रद्धांजलि दी।
डेविड वाज अ मैन हु बिलीव्ड पैशनेटली इन दिस कंट्री एंड इन इट्स फ्यूचर एंड वी लॉस्ट टुडे a fine public servant and a much loved friend and colleague and our thoughts are very much today with his wife his children and his family
aur bharat mein aaj congress karya samiti ki aham baithak ho rahi hai baithak mein congress ke naye adhyaksh ke chunav par koi faisla ho sakta hai सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि कांग्रेस की इस शीर्ष निर्णय लेने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में संगठनात्मक चुनावों को हरी झंडी दी जा सकती है। इसमें अध्यक्ष पद के लिए अंतरिम चुनाव के बजाय पूर्वकालिक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव शामिल है। माना जा रहा है कि सोनिया गांधी के अध्यक्ष पद पर बने रहने के आसार हैं। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 74 सेंट और भारत के 55.60 रुपये के बराबर है। खेल समाचारों में टेनिस में टेलर फ्रिट्स ने वर्ल्ड नंबर 4 को बाहर करते हुए अपने युवा करियर की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। फ्रिट्स ने जेवरेव को 4-6, 6-3, 7-6 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी रविवार को पर्थ में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 22 डिग्री न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 23 डिग्री न्यूनतम 60 डिग्री। मेलबर्न में बादल, अधिकतम तापमान 18 डिग्री न्यूनतम 9 डिग्री। होबार्ट में बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान 17 डिग्री न्यूनतम 8 डिग्री। कैनबरा में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 19 डिग्री न्यूनतम 2 डिग्री। सिडनी में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 22 डिग्री न्यूनतम 11 डिग्री। ब्रिस्बेन में भी धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 28 डिग्री न्यूनतम 13 डिग्री। और डार्विन में बौछारें, तूफान की संभावना, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।